कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hare Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hare Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hare Govinda Jai Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannathai Jaya Jagannathai Baladeva Jaya Subhadra Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सतहस्त डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय गौ प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरू
रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च हितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामे भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेश तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए भौतिक जगत के गोलोक से सुरभि देवी को लेकर आए हैं, क्योंकि सुरभि गाय है और गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सुरभि कुंड नाम के स्थान में जो गोवर्धन के पास में ही है, इंद्र और सुरभि दोनों श्री कृष्ण के समक्ष आए। इंद्रदेव का नमस्कार नहीं स्वीकार किया श्री कृष्ण ने। पहले इंद्रदेव ने उपेक्षा की इंद्र की, श्री कृष्ण ने उपेक्षा की इंद्र की, तब सुरभि देवी सामने आई और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि इंद्रदेव वास्तव में बहुत लज्जित हैं, आपकी कृपाभिलाषी वो है, अपनी आंखें और सर नीचे करके खड़े हैं मेरे पीछे, आपके सामने आने की अनुमति चाह रहे हैं। वैसे यदि सैकड़ों इंद्र भी अपने क्रोध में ब्रज भूमि को नष्ट करना चाहें तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वृंदावन को, इस ब्रज भूमि को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि वृंदावन आपके लिए अति प्रिय है, ये आपका ही धाम है। इसलिए आप सुरक्षा प्रदान करेंगे ब्रज भूमि को और ब्रजवासियों को, साथ साथ आप दिव्य प्रेम भी उनको प्रदान कर देंगे। इसलिए वृंदावन के लिए तो कोई डर नहीं है, लेकिन डर तो इंद्र के लिए है। इसलिए इंद्र अब आपके सामने आए हैं। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, गोवर्धन लीला के समाप्ति होने पर श्री कृष्ण सोच रहे थे कि जाके जरा परीक्षण तो कर लें कि ब्रजभूमि में क्या नुकसान किया है इंद्र ने। मैंने गोवर्धन को धारण किया था ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, और इंद्रदेव के सारे क्रोध का जो प्रवाह है वो गोवर्धन पे लगा, तो कहीं गोवर्धन को कुछ हानि तो नहीं पहुंची। और साथ साथ श्री कृष्ण थोड़े थक भी गए थे, आखिर 7 दिन जो गोवर्धन को धारण किया था बिना रुके हुए, तो वो ऐसे ही सैर के लिए निकल पड़े और सोच रहे थे कि गोवर्धन का मनोरम दृश्य देखकर चित्त प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए घूमने के लिए गोवर्धन के तट पर वो टहल रहे थे। आंतरिक इच्छा ये थी कि एकांत स्थान में यहाँ पर इंद्र आ जाए और क्षमा याचना करे, तो मैं इसे 1-2 अच्छी बातें सुनाऊंगा, उसे 1-2 अच्छे उपदेश दूंगा, इंद्र के ऊपर कृपा करूंगा, परंतु सबके सामने नहीं, एकांत स्थान में। वैसे श्री कृष्ण को जो चिंता थी गोवर्धन के लिए, उसका कोई कारण नहीं था वास्तव में, क्योंकि गोवर्धन भी भगवान श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण से गोवर्धन अभिन्न है, भक्त भी है गोवर्धन, साथ साथ श्री कृष्ण के अवतार या रूप भी माने जाते हैं। और जैसा कि हम बलराम जयंती के दिवस पर चर्चा कर रहे थे, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से गोवर्धन बड़े हर्षित होते रहते थे। तो इस समय श्री कृष्ण की छोटी उंगली गोवर्धन को धारण की हुई थी, तो स्वाभाविक है कि गोवर्धन बड़े मुदित अवस्था में हुए होंगे, और वास्तव में ऐसे ही था। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि गोवर्धन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर जितने भी मोर थे, जितने भी हिरण थे, उन सबको भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि इंद्रदेव अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अपने वज्र अस्त्र को छोड़ रहे थे, फिर भी इन प्राणियों को गोवर्धन के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। जो गोवर्धन के आश्रय में नीचे खड़े थे, उनकी तो बात दूर ही है। तो इसका मतलब है कि गोवर्धन का श्री कृष्ण से स्पर्श होने के कारण ऐसे बड़ी आपत्ति के समय भी बिल्कुल कोई हानि नहीं हुई, गोवर्धन को कोई दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं पहुंची, बल्कि गोवर्धन बड़े मुदित अवस्था में, आनंदित अवस्था में थे। तो हमारे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण उपदेश है, यदि हम श्री कृष्ण के संपर्क में रहें, यदि श्री कृष्ण का स्पर्श हमारे ऊपर रहे, भक्ति योग के माध्यम से, हमारे साधन भजन आदि के माध्यम से, तो फिर हम भी गोवर्धन की तरह हर अवस्था में मुदित रहेंगे। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आएंगी, तब उन कठिनाइयों के बीच और हमारे बीच में एक कवच रहेगा, हमारी ये भक्ति का कवच, जो हमको अत्यंत दुख से बचाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों के लिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो हि दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो कहते हैं कि यम लब्ध्वा, ऐसे समाधि की स्थिति जिसमें कि हम सतत श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हो भक्ति भाव से, ऐसे स्मरण अवस्था को प्राप्त करने के बाद अन्य जितने भी अवस्थाएं हैं, अन्य जितने भी तथा कथित प्राप्त करने योग्य वस्तुएं हैं, वो सब तुच्छ नजर आएंगी हमको। च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, अपरम लाभम अर्थात अन्य वस्तु का लाभ जब होगा, न अधिकम ततः, हम श्री कृष्ण के प्राप्ति से इसे कभी भी अधिक नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, इस बात का दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो जाएगा। और इसके कारण यस्मिन स्थितो, ऐसी अवस्था में स्थित होकर दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते। गुरुण अपि, गुरुण मतलब गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी गुरु, तो गुरुण अपि, हालांकि ये दुख बहुत बहुत बड़े दुख हो सकते हैं, फिर भी ऐसा भक्त जो कि कृष्ण के स्मरण में स्थित है वो विचलित नहीं होगा। तो कौन कह सकता है इस भौतिक सृष्टि में रहकर कि उसके जीवन में कठिनाइयों की लहरें नहीं आ रही हैं? दिन ब दिन, आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि हम गोवर्धन की तरह श्री कृष्ण की सेवा में स्थित रहें, निष्ठावान रहें ऐसी सेवा में, तो हम भी कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी दुखी नहीं होंगे, हम मुदित अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार से इंद्रदेव यहां पर आए, पूरा दंडवत किया, सुरभि देवी की प्रार्थना को स्वीकार किया श्री कृष्ण ने, और फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इंद्रदेव ने पूरा दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया। विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्शपादयोर् एनम् किरीटेनार्क वर्चसा। विविक्त उपसंगम्य, विविक्त मतलब एकांत स्थान में, उपसंगम्य सामने आए, कौन? इंद्रदेव। व्रीडितः कृतहेलनः, बड़े लज्जित थे, क्योंकि हेलन कृत, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था, तो इस अपराध के कारण अब वो बड़े लज्जित हो गए थे। पस्पर्श पादयोर एनम, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्होंने पूरा प्रणाम किया, और प्रणाम जब किया तो उनका जो किरीट है, किरीट एनार्क वर्चसा, ऐसे लग रहा था कि उनके किरीट के ऊपर, मुकुट पर जो अनमोल रत्न है, अपने प्रकाश से, अपने उजाले से वो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों को प्रकाशित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल जो कि वैसे भी बहुत सुंदर हैं, अब और भी सुंदर दिख पड़ रहे थे। तो वहां पर इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने इस बार प्रणाम को स्वीकार किया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दृष्ट श्रुतानुभावोस्य कृष्णस्यामित तेजसः नष्ट त्रिलोकेश मद इदम आह कृतांजलिः। वो कहते हैं, दृष्ट श्रुत अनुभावः अस्य, अस्य मतलब श्री कृष्ण का, अनुभाव अर्थात उनके तेज का, उनके शक्ति का, उनके प्रभाव का, क्या किया था इंद्र ने? दृष्ट और श्रुत, दृष्ट मतलब देखा था। अपनी आंखों से श्री इंद्रदेव ने श्री कृष्ण के तेज का प्रदर्शन का दर्शन किया था। इंद्रदेव ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटा बच्चा ऐसे इतना बड़ा पर्वत अपने बाएं हाथ पे उठा सकता है और लगातार 7 दिन उठाकर रखेगा और सारे ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। अपने सपनों में भी इंद्रदेव ने ऐसे सोचा नहीं था। तो अपने आंखों के सामने उन्होंने ये देखा, दृष्ट अनुभाव। और जब उनका मन डामाडोल हो गया ये दृश्य देखकर, तो सीधे जो है इंद्र ब्रह्मदेव के पास चले गए थे सुमेरु पर्वत के ऊपर। अब मैं क्या करूं, बहुत बड़ी गलती हुई, अब एक रास्ता बताइए आप, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्री कृष्ण के बारे में बताया था, श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण की शक्ति क्या है, और शायद ब्रह्मा जी ने अपने गलती के बारे में भी कुछ बताया होगा कि बस 2 साल पहले ही, पृथ्वी लोक के 2 साल पहले मेरी भी बड़ी गलती हुई, इंद्रदेव क्या करें, दिखने में है ये श्री कृष्ण छोटे से बालक, परंतु पहचान लो कि ये परम सत्य है। तो उस समय इंद्रदेव ने सुना, श्रुत अनुभाव, और फिर वो आए कृष्णस्य अमित तेजस। उनको समझ में आया कि कृष्ण का तेज जो है वो अमित है। अमित का मतलब क्या है, जिसका नापतोल नहीं किया जा सकता, हमारे नापतोल की क्षमता के बाहर है श्री कृष्ण का तेज। नष्ट त्रिलोकेश मद, मद अर्थात पागलपन या नशा। कोई मादक द्रव्य का सेवन हम करते हैं तो उन मत अवस्था में हो जाते हैं। तो जो घमंड होता है इसे मद कहते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का नशा होता है। जिस प्रकार से नशे में आकर एक व्यक्ति अनाप शनाप बकने लगता है, उसी प्रकार से एक घमंड से उन्मत्त व्यक्ति तरह तरह की चीजें बड़बड़ाने लगता है, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, ये मेरा है। इसलिए घमंड को मद कहा गया है शास्त्रों में। तो त्रिलोकेश मद नष्ट है, कि मैं त्रिलोकों का भूभुवस्व, इन 3 लोकों का मैं ईश हूं, ईश्वर हूं, ये जो अभिमान था इंद्रदेव को ये नष्ट हो गया श्री कृष्ण के बारे में सुनकर और देखकर। तो उसी प्रकार से हमारे भीतर जो अनर्थ हैं, हमारे भीतर हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा मद तो है ही। एक जो रंक होता है या सड़क पे भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी अपने कौड़े पैसे का अभिमान रहता है कि मेरे पास दूसरे भिखारी की तुलना में 1 रुपया ज्यादा है। हाँ, आजकल भीख मांगने वालों के पास बहुत कुछ होता है। तो चाहे हमारे पास बहुत कम हो, हमारे पास बहुत ज्यादा हो, ये घमंड एक ऐसी चीज है, अभिमान एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है। कहां इंद्र और कहां हम, कहां एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है, जो अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता, और कहां कोई विश्व सम्राट। ठीक उसी प्रकार से कहां इस दुनिया का, इस पृथ्वी लोक का सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति और कहां इंद्र, कोई तुलना ही नहीं है। इंद्रदेव का ऐश्वर्य हमारी कल्पना के बाहर है। तो फिर इंद्रदेव का जो उदाहरण है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रदेव का जब घमंड चूर हो गया, मान भंग हो गया, केवल श्री कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करने से, श्रवण अभी तक कीर्तन नहीं किया था इंद्रदेव ने, अभी आके कीर्तन करने वाले हैं, श्रवण मात्र से उनका मान भंग हो गया। तो सुनिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग। केवल श्री कृष्ण की कथाओं का और पवित्र नामों का श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय के अंदर जितने भी अमंगल वस्तुएं हैं उन सब का विनाश निश्चित है। और ऐसे नम्र भाव को स्वीकार करके फिर क्या किया, इदम आह कृतांजलि ही, फिर अपने आप को करबद्ध अवस्था में करके श्री कृष्ण के सामने आए। और जब उन्होंने दंडवत किया था तो काफी समय तक वैसे ही दंडवत की अवस्था में रहे, क्योंकि भाव विभोर हो गए थे, उनको वास्तव में बहुत डर भी लगा था। और दंडवत करके काफी समय तक वहां करते रहे दंडवत, उनकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। ये आंसू जो है इन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो लिया और इंद्रकुंड उत्पन्न हो गया। फिर लंबे समय के बाद इंद्रदेव उठे, अपने आंखों से आंसू पोंछ दिए और फिर ऐसे करबद्ध अवस्था में कृतांजलि मुद्रा में श्री कृष्ण के सामने अपने आप को उन्होंने पेश किया। तो इस प्रकार से इंद्रदेव ने अपनी स्तुति आरंभ कर ली। अब श्रवण किया था, अब तक अब कीर्तन करने जा रहे हैं। कीर्तन मतलब क्या है? कीर्ति का गान। तो श्री कृष्ण के कीर्ति का जब गान होता है, ये कीर्तन हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम क्या है, ये भी श्री कृष्ण की कीर्ति के ही गान है। तो अभी इंद्रदेव अपना कीर्तन आरंभ करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये पहला श्लोक था जो इंद्रदेव ने कहा था, जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। बोलिएगा, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। और कोई? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सतो गुण का प्राकट्य है, यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमो गुणों से रहित है। आपके भीतर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रवाह नहीं पाया जाता। तो यहां पर श्री कृष्ण यहाँ पर इंद्रदेव क्षमा कीजिए श्री कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं और वो सबसे पहले ये घोषणा कर रहे हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। विशुद्ध सत्वम, आप आध्यात्मिक हैं, आप दिव्य हैं, आपका रूप इन भौतिक गुणों से नहीं बना हुआ है। इस दुनिया के भीतर जो सत्व गुण पाया जाता है वो भौतिक है, साथ साथ ये भौतिक गुण भी सदैव मिश्रित अवस्था में रहता है, तमोगुण और रजोगुण से मिश्रित रहता है। यहाँ पर शुद्ध भौतिक सत्व गुण भी नहीं पाया जाता, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर विशुद्ध सत्व है, इन तीन गुणों से परे है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तव धाम, ये धाम शब्द तो हम सब ने सुना है, कई बार सुना है, परंतु धाम के कई अर्थ हैं वास्तव में। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जो कि श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु बहुत मानते थे, उन्होंने ये धाम शब्द के अनेक अर्थ बतलाए हैं। वो कहते हैं कि धाम शब्द का एक अर्थ होता है निवास, आश्रय आदि। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं गोलोक वृंदावन में, उनका भी एक निवास स्थान है, परंतु ऐसे होते हुए भी स्वयं श्री कृष्ण सारे आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व के आश्रय हैं, आधार हैं स्वयं, परंतु श्री कृष्ण का कोई अन्य आश्रय नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को स्व आश्रय आश्रय कहते हैं। जो अपना ही आश्रय है उनको और किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो श्री कृष्ण स्वयं आश्रय हैं, निवास हैं। जन निवासो देवकी जन्मवादो, सुखदेव गोस्वामी भागवत में ये भी कहते हैं श्री कृष्ण जन निवास है, जो जनों में निवास करते हैं साधारण व्यक्ति की तरह है, परंतु वास्तव में है वो जनों के निवास, जनों के आश्रय। यद्यपि वो एक साधारण व्यक्ति की तरह मनुष्य की तरह लीला करते हैं, फिर भी हमें जानना चाहिए कि वो हैं समस्त व्यक्तियों के, समस्त सृष्टि के आधार और आश्रय। इसलिए श्रीमद् भागवत के जो 10 विषय हैं, उनका अंतिम विषय है आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरेशानुकथा स्थानम योगो मुक्ति निरोधः आश्रयः। तो ये आश्रय जो है ये 10वां विषय है जो श्री कृष्ण को संबोधित करता है। तो श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के और सारे प्राणियों के आश्रय होने के नाते, निवास स्थान होने के नाते वो धाम कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण धाम है क्योंकि वो सबके निवास स्थान है। श्रीधर स्वामी कहते हैं धाम शब्द का और एक भी अर्थ हो सकता है कि सबसे प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु, या ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो कि दिव्य आनंद या श्रेष्ठ श्रेणी के आनंद को अन्यों को प्रदान करते हैं। एक अन्य जगह भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे आत्मा के भी आत्मा हैं, इसलिए सबसे प्रिय व्यक्ति हमारे लिए श्री कृष्ण है। साधारण तौर से एक व्यक्ति अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना? अपनी इंद्रियां, अपना अस्तित्व, अपना सुख दुख, ये सब हर एक व्यक्ति के लिए मायने रखता है, महत्वपूर्ण रहता है, परंतु अपने आप भी, अपने आप की जो आत्मा है, आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे अति प्रिय है, सबसे प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, श्री कृष्ण है। और वो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण ये दो अक्षर हैं, इसमें से कृष ये एक धातु है जिसका अर्थ क्या है, जो आध्यात्मिक अस्तित्व है ये कृष है, और जो ण है, ण का मतलब है जो दिव्य आनंद है। तो तयोर ऐक्यम, जब इन दोनों को कृष और ण को जोड़ा जाता है तो फिर ये परम ब्रह्म को संबोधित करता है और इनका नाम कृष्ण हो जाता है, और इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो सर्व आकर्षक है, जो सबको आकर्षित करके उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, ये है कृष्ण। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। उसी प्रकार पुराणों में यह भी कहा गया है कि राम शब्द का अर्थ क्या है। रमन्ते योगिनो, योगी जन जो हैं, वो जो रमण करते हैं किन चीज में, किन चीजों में, संसार की चीजों में नहीं। जो योगी लोग हैं वो रमण करते हैं अनंत आध्यात्मिक जगत के आनंद में। सत्य आनंदे चिदात्मनी, सत्य के आनंद में रमण करते हैं, इस जगत की मिथ्या आनंद में नहीं। चिदात्मनी, जो चिन्मय है, ऐसे वस्तुओं में रमण करते हैं। और इसलिए जिस चीज में, जिस व्यक्ति में या वस्तु में योगी जन आनंद लेते हैं उनको राम कहते हैं। इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। तो ऐसे परम सत्य को राम कहते हैं क्योंकि वो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तो चाहे आप कृष्ण कहिए या राम कहिए, दोनों का शब्द यही है कि दोनों दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए वास्तव में राम शब्द भी कृष्ण को ही संबोधित करता है। राम भी कृष्ण ही है, कृष्ण भी राम है। तो इस प्रकार से धाम ये कृष्ण को संबोधित करता है। और धाम शब्द का ये भी अर्थ होता है रूप। तो जब यहां इंद्रदेव कहते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तव धाम आपका रूप, और इंद्रदेव तो श्री कृष्ण का सुंदर रूप देख ही रहे हैं, और साथ साथ में धाम का अर्थ ये भी होता है शक्ति, ऐश्वर्य। तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रदर्शन देख ही चुके हैं इंद्र। भगवत गीता में श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्त एवावच्छते मम तेजोंश संभवम। वो कहते हैं कि ये जितना भी ये दुनिया में विभूतिमत वस्तुएं हैं, जो जितने भी मेरी विभूतियां हैं, जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं, ऐश्वर्यशाली वस्तुएं हैं, मम तेजोंश संभवम, ये मेरे तेज से प्रकट होती हैं। अथवा बहु नहीं तेन किम ज्ञाते न तव अर्जुना विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थित हो जगत। वो कहते हैं कि ये सब वर्णन करने की क्या आवश्यकता है हे अर्जुन, इतना जान लो कि केवल मेरे एक अंश मात्र से सारे भौतिक सृष्टि का मैं पालन करता हूं। तो ये श्री कृष्ण का अंश कौन है, ये परमात्मा है। तो परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण सारे भौतिक सृष्टि को संभाल रहे हैं, ये उनका तेज है। तो यदि उनके अंश का, बल्कि उनकी कला, उनके अंश के अंश के अंश का ये प्रभाव है, तो फिर जो मूल श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं गोलोक वृंदावन के, उनका प्रभाव कितना होगा। इसलिए अर्जुन ने भी कह दिया था 10वें अध्याय में ही, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं धाम शब्द का, और अंत में उनका निष्कर्ष ये है कि धाम का अर्थ है स्वरूप। स्वरूप मतलब हमारा मूल रूप, या हमारी मूल अवस्था या हमारा मूल स्वभाव। तो कृष्ण के संदर्भ में इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण का दिव्य शरीर जो कि उनका स्वरूप है, श्री कृष्ण के शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जब ये स्वरूप शब्द हम सबके बारे में होता है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा आध्यात्मिक शरीर। इस समय हमारे शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है, परंतु जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तो आत्मा ही शरीर बन जाता है और आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी ने धाम शब्द की व्याख्या की है कि श्री कृष्ण ही धाम है। इसलिए इंद्रदेव कह रहे हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। इन भौतिक गुणों से आप विचलित नहीं होते हैं, आप स्थिर रहते हैं, आपके दिव्य शरीर में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए शांतम शब्द का अर्थ ये भी है ध्वस्त रजस तमस्कम, कि आपके शरीर के अंदर रजगुण नहीं, तमोगुण नहीं, बल्कि ये संसार का सत्वगुण भी नहीं है। और साथ साथ इस दुनिया के जो गुणों का प्रवाह है, गुण संप्रवाह हो, ये किससे उत्पन्न होता है? माया मय, इस दुनिया के भ्रम से, इस दुनिया के माया से उत्पन्न होता है और अज्ञान से उत्पन्न होता है। और न अज्ञान और न माया आपके अंदर है, इसलिए गुणों का प्रवाह आपके ऊपर नहीं होता है। अज्ञान के लिए इंद्रदेव ने शब्द प्रयोग किया है अग्रहण। अग्रहण ग्रहण करना, ग्रह धातु, ग्रह अर्थात किसी चीज को ग्रहण करना। किस चीज को ग्रहण करना? मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को ग्रहण करना। तो जब मैं मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को जान नहीं पाता हूं, इस बात का पकड़ मेरे मन में नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तो वो अज्ञान है। इसलिए इसे अग्रहण कहते हैं। संस्कृत भाषा कितनी सुंदर है देखिए। तो अग्रहण का मतलब है अज्ञान, क्योंकि हम उस बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि मेरा वास्तविक अस्तित्व और स्वभाव और स्वरूप क्या है। तो खैर, इस प्रकार से इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं और श्री कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो एक बार बंगाल के एक कवि वहां पर आए और उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ देव और श्री कृष्ण की स्तुति की है, उनकी प्रशंसा की है। तो उनके एक मित्र थे जिनका नाम था भगवान आचार्य, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो उन्होंने भगवान आचार्य से कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को ये कविता सुनाना चाहता हूं। तो वो आए स्वरूप दामोदर के पास। तो ऐसे एक प्राय नियम बन गया था कि यदि किसी को कोई लेख, कोई पुस्तक, कोई श्लोक, कोई गीत, कोई कविता चैतन्य महाप्रभु को सुनानी होती तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाते, क्योंकि पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको सुन के या पढ़ के ये निर्णय लेते कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, कहीं इसमें कोई रसाभास नहीं है, रसों का आभास नहीं है ना, कहीं कोई गलत सिद्धांत का वर्णन तो नहीं है ना। और फिर यदि स्वरूप दामोदर हां कहते तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो पढ़ी जाती। तो जब भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर के पास आए तो वो कहने लगे, अरे भगवान आचार्य, तुम तो एक गोप हो परम उदार, क्योंकि मूल रूप में भगवान आचार्य गोप है गोलोक वृंदावन, और किसी भी तरह के शास्त्र को सुनने की इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो जाती है, ऐसे वैसे कवियों से जब हम कोई आध्यात्मिक विषय सुनते हैं तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे कवियों के कविताओं में रसाभास पाया जाता है, सिद्धांत विरोध बात कोई ना कोई वो कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की कविताएं या अन्य जो साहित्य है उनको नहीं पढ़ना चाहिए हमें। पहली बात तो ये है कि उनको सही ज्ञान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात कि व्याकरण, अलंकार आदि ऐसी चीजों का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, और साथ साथ भक्ति के रस तत्व का ज्ञान भी नहीं होता, तो बहुत गलतियां करते हैं। फिर भी भगवान आचार्य ने कहा, नहीं सुनिए, आप सुनिए, कृपया सुनिए, एक बार तो सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो स्वरूप दामोदर ने हाँ कह दिया। फिर वो कवि अपनी कविता सुनाने लगा, और कविता में उसने ये कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जय हो, जो कि स्वर्ण रूप में आए हैं, और उन्होंने जगन्नाथ नाम के शरीर में प्रवेश किया है और उस शरीर को जीवित किया है, और ऐसे जीवित करके अब वो सारे नीलाचल में, बल्कि सारे ब्रह्मांड में वो भक्ति फैला रहे हैं और अपना प्रभाव भी फैला रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने जब उनको पूछा कि इसका मतलब समझाइए, तो उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु हैं और ये जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ के जो शरीर है इसमें ये महाप्रभु प्रवेश कर चुके हैं, और इस प्रकार से सारा आध्यात्मिक जगत का विस्तार उन्होंने किया है यहाँ पर नीलाचल में। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, रस क्या है, भगवत तत्व की बिल्कुल जानकारी तुम्हें नहीं है। तुमने सबसे बड़े तीन गलतियां की हैं। पहली गलती ये है कि तुमने जगन्नाथ के श्री मूर्ति को, श्री विग्रह को एक साधारण जड़ पदार्थों से बना हुआ एक शरीर समझा है। दूसरी बात, तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण जीव समझा है। और तीसरी गलती जो तुमने की है वो ये है कि तुमने श्री कृष्ण के या भगवान के दिव्य शरीर और आत्मा में भेद किया है। ईश्वर नाहे कभू देह देही भेद, तो ईश्वर के देह और आत्मा में कभी अंतर नहीं हो सकता है। चिदानंद देह, भगवान का देह ही चिदानंद होता है। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत से और अन्य ग्रंथों से श्लोक कहे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि श्री कृष्ण का शरीर चिन्मय है, दिव्य है। उस समय सारे भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बातों को सुनकर सब साधु साधु कहने लगे। वो ब्राह्मण बहुत लज्जित हो गया, परंतु हालांकि उसने इतनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो नम्र था, तुरंत उसने वैष्णवों के सामने एक नम्र स्थान लिया, दंडवत प्रणाम किया, अपने दांतों में तृण धारण किया, और इस भाव को देखकर स्वरूप दामोदर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा उस कवि से, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, तुम्हें यदि भागवत पढ़ना है तो वैष्णवों के स्थान में जाके भागवत पढ़ो, अन्य लोग भागवत को नहीं समझेंगे। केवल कोई अपना मनोरंजन के लिए कुछ कहेगा, कोई कुछ दूसरा ही अर्थ कुछ भागवत से निकालेगा, तो ऐसे तरह तरह के लोग भागवत का दुरुपयोग करते हैं, परंतु वास्तव में भागवत का जो तात्पर्य है ये केवल वैष्णवों के संग में ही तुम्हें प्राप्त होगा। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उस कवि को स्वीकार किया अपने चरण कमलों में, क्योंकि उसने बहुत एक नम्र स्वभाव धारण कर लिया। तो गलतियां हो भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, वो अज्ञान में होगी गलती, परंतु बाद में जब वैष्णवों ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने विशेष करके उनको उनकी गलतियों को ठीक किया तो उन्होंने गलती को स्वीकार किया बड़े नम्रता पूर्वक और श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण को स्वीकार किया। तो खैर कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्रदेव ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हम सबको सिखलाना चाहते हैं उनकी प्रार्थना से कि श्री कृष्ण का दिव्य शरीर चिन्मय है और कभी भी इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा है कि आपका शरीर दिव्य है तो ये कैसे संभव है कि आपके अंदर जो अज्ञान के लक्षण प्रकट होंगे जैसे कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है ये आपके अंदर तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर ही दिव्य है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह आदि ये किसके अंदर आते हैं जिनका शरीर तीन गुणों के प्रभाव में है। इसलिए आपके जितने भी कार्य हैं वो तीन गुणों से प्रेरित नहीं है तीन गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इंद्रदेव कहना चाहते थे कि आपने जो मुझे दंड दिया है बल्कि दंड अभी तक नहीं दिया है आपने जो मेरे मान का भंग किया है कोई ईर्ष्या से नहीं किया। हम देखते हैं कि दुनिया में जो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं और एक आदमी जीत जाता है दूसरे के मान को भंग कर देता है उसको अपमानित करता है तो वो ईर्ष्या भाव से ऐसे कार्य करता है। तो इंद्रदेव इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि इंद्र जो भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया तो ईर्ष्या से नहीं किया क्योंकि ईर्ष्या जैसे गुण भगवान में नहीं पाए जाते आध्यात्मिक जगत में नहीं पाए जाते जिस व्यक्ति का चिन्मय शरीर है ऐसे व्यक्ति में नहीं पाए जाते केवल भौतिक जगत के भीतर जहां तीन गुणों का राज्य है केवल यहां पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करते हैं तो लोभ से नहीं करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण किसी असुरों का वध करते हैं तो साधारण रजगुण से उत्पन्न होने वाले क्रोध से नहीं करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं गोपियों के साथ में तो वो काम के शिकार नहीं होते हैं। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि ये सब गुण ये श्री कृष्ण में नहीं है ऐसा यहाँ पर इंद्रदेव कह रहे हैं। और फिर आगे इंद्रदेव कहते हैं पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंडः हिताय चेच्छा तनभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनम्। वो कहते हैं कि हे कृष्ण आप जगताम इस सारे जगत के पिता हैं गुरु हैं और अधीश भी हैं आप ही सब कुछ है पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामहः और नियंता भी आप ही हैं क्योंकि ये सृष्टि आप ही से आती है और इसके साथ साथ में जो दुष्ट व्यक्ति हैं आप उनके लिए दूसरा स्वरूप दिखाते हैं जो धर्म का पालन करते हैं जो पुण्यात्माएं हैं जो धार्मिक व्यक्ति हैं आप ऐसे व्यक्तियों के लिए पिता की तरह जैसे पिता एक पुत्र को प्रेम करता है वैसे प्रेम करते हैं जैसे गुरु शिष्य को प्रेम करता है वैसे आप उनसे प्रेम करते हैं। और क्योंकि आप जगत के नियंता हैं ईश हैं इसलिए आप इन सब की इन धार्मिक लोगों की रक्षा करते हैं और आप उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। परंतु जो लोग धार्मिक नहीं हैं जो पापी हैं जो दुष्ट हैं जो आपके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं दुरत्य यह काल उपात दंड है कि आप काल रूप में आते हैं। काल रूप का सामना करना बहुत कठिन है प्राय असंभव है। काल के ऊपर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो इस संसार का। काल भगवान की शक्ति होने के कारण सर्वशक्तिमान है इस भौतिक जगत में। तो आप ऐसे दुष्ट लोगों के लिए दुरत्य काल है उपात दंड है, काल के रूप में आके आप उनको दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अहम एवाक्षय काल है, कि मैं अक्षय काल हूं। काल के माध्यम से मैं सारे जगत का कुक्षीण करता हूं, क्षय करता हूं। जगत का क्षय जो है ये काल शक्ति से होता है, परंतु काल का क्षय नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही काल हूं, क्योंकि ये काल ही मेरी शक्ति है। अहम एवाक्षय कालो, कालोस्मी वो कहते हैं मैं काल हूं। काल कलयताम अस्मी अन्य जगह गीता में वो कहते हैं कि जब दमन करने की जितने भी शक्तियां इस सृष्टि में हैं, अनेक हैं दमन करने की शक्तियां, जैसे कि राजा होता है वो भी दुष्टों का दमन करता है, जो सेना है या पुलिस है वो भी दुष्टों का दमन करती है, लेकिन ऐसे दमन करने वाले शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ है काल। काल सबका दमन कर देता है, दमन करने वालों का भी दमन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं काल है कलयताम अहम दंडो दमयताम अस्मी। वैसे यहां कोई गुनहगार होता है जो नियमों का, कानून का, धर्म का उल्लंघन करता है, तो उसके दमन के लिए कई साधन हैं, कई पद्धतियां हैं, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ पद्धति है दंड। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो दंड हूं जिनसे कि दुष्टों का दमन होता है। तो जहां भी दुष्टों का दमन होता है इस सृष्टि में, तो हमें समझना चाहिए कि वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण के प्रतीक है। ये भी एक शक्ति है जो श्री कृष्ण से आती है। और परशुराम जी आप जानते हैं शक्त्यावेश अवतार थे, उनको भगवान ने दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की थी, जिससे कि उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का दमन किया, जो कि अपने प्रभुदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। क्षत्रिय का काम होता है प्रजा का रक्षण करना, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार राज्य को चलाना, परंतु जब क्षत्रिय जो राजा होते हैं घमंड के शिकार होकर, स्वार्थ के शिकार होकर वो प्रजा का अहित करते हैं, प्रजा का की रक्षा नहीं करते हैं, तो फिर उत्पात पैदा हो जाता है। और भगवान ऐसे काल में, ऐसे समय में आए परशुराम के रूप में, और उन्होंने अनेक क्षत्रियों का दमन किया। तो यहां पर इंद्रदेव बता रहे हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों के लिए मैं आप दंड देते हैं। कभी कभी आप अप्रत्यक्ष रूप से काल के रूप में आके उनको दंड देते हैं, क्योंकि मृत्यु सर्वहरस चाहम, काल के प्रभाव से मृत्यु आती है, मृत्यु हमारा सब कुछ छीन लेती है। और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आके आप दंड देते हैं, जैसे कि आप हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं या हिरण्याक्ष को मार डालते हैं। विविध अवतारों में आके प्रत्यक्ष रूप से आप दुष्टों को दंड देते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है दंड क्यों दिया जाता है, तो इंद्रदेव शब्द का प्रयोग करते हैं हिताय, केवल हित के लिए मैं दंड आप दंड देते हैं हे कृष्ण। आप ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, घृणा से नहीं, क्रोध से नहीं, आप केवल जिसको दंड दे रहे हैं उसका हित हो, इस भावना से आप दंड देते हैं उसे, चाहे वो काल के माध्यम से हो, चाहे आपके अवतीर्ण करके स्वयं अपने कर कमलों से आप दंड दे रहे हो, परंतु सबका हित ही करते हैं आप। तो दंड देकर भगवान किस प्रकार से स्थित करते हैं, जैसे देखिए ब्रह्मा जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप से दंड दिया, अपने असीमित ऐश्वर्य का प्रदर्शन श्री कृष्ण ने यहां पर किया वृंदावन में, जबकि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और गौओं को चोरी कर लिया था। तो इंद्रदेव ब्रह्मा जी का जो भाव था कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं इस ब्रह्मांड के भीतर, वो खत्म हो गया। तो कभी कभी दंड देकर भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति का, चाहे वो भक्त क्यों न हो, उसका घमंड निकाल देते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण दंड देकर किसी व्यक्ति की पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो दुष्टता होती है, उसको निकाल देते हैं। जैसे कि कालिया के साथ हुआ, कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना की ना, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीरललना च रत्तपो विहाय कामान सुचिरं दृढव्रता। प्रार्थना करती है कालिया की पत्नियां कि हे कृष्ण, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी असीम कृपा हमारे पति के ऊपर कैसे आई, जबकि उसे एक सांप का शरीर मिला है, जो कि इस बात का संकेत है कि पूर्व जन्म में इसने बहुत पाप किए होंगे। आपके चरण कमलों की धूलि के लिए स्वयं श्री या लक्ष्मी देवी लालायित रहती हैं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी चिरकाल से तपस्या कर रही हैं, फिर भी आपके चरणों में स्थान प्राप्त नहीं होती। परंतु हमारे ये पति जो दुष्ट है, उसे आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी। कस्य अनुभाव, क्या उसने किया होगा, क्या तपस्या की या क्या पुण्य की, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो कालिया का दमन जब हुआ, कालिया का अहो सौभाग्य था, बहुत ही उसका हृदय विष से भरा था। न केवल उसके फण विष से भरे थे, परंतु उसके हृदय में भी द्वेष और घृणा का विष भरा था, साधारण विष से ये ज्यादा भयंकर होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने चरण कमल कालिये के फणों के ऊपर रख दिया और वहां सुंदर नृत्य किया, तो कालिये के भीतर जितने भी दुर्गुण थे वो सब खत्म हो गए। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर कालिये ने श्री कृष्ण का शरण लिया और जो भी दुष्टता थी उसकी सब निकल गई, और फिर श्री कृष्ण ने कालिये को बहिष्कृत कर दिया। अब चले जाओ यहां से, अब यहां तुम ब्रज में नहीं रहोगे, मेरे प्रिय ब्रजवासियों को कष्ट नहीं दोगे, बहुत दूर चले जाओ यहां से। तो बड़े आज्ञाकारी बन के कालिया बहुत दूर समुद्र में चला गया। तो इसे देख सकते हैं कि यहाँ ये एक उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दंड देकर जो दुष्टता है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, उसको नष्ट कर दिया। उसी प्रकार से कभी कभी भगवान किसी का वध करते हैं और उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं या किसी श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान विष्णु और कृष्ण का एक विशेष गुण है, हतारी गतिदायक, हत आरी, जो अपने शत्रुओं की हत्या करके गतिदायक उनको गति प्रदान करते हैं। कैसी गति? कोई श्रेष्ठ गति। कभी कभी भगवान विष्णु जब किसी असुर का वध करते हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी करा देते हैं, परंतु गोलोक की प्राप्ति कराना या वैकुंठ की प्राप्ति कराना वध करके, ये केवल श्री कृष्ण करते हैं। ये रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, हतारीणाम गतिदायक हतारी नाम मतलब जो जिनकी हत्या हुई है जिनको श्री कृष्ण ने की है मुक्तिदाता हतारी नाम हतारी गतिदायक है। तो ऐसे लोगों को ऐसे शत्रुओं को जिनका वध श्री कृष्ण करते हैं वो उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ही रूप गोस्वामी कहते हैं अवर्ग दाता पी शिखंड मौली कि हे शिखंड मौली, शिखंड मतलब रत्न, मौली मतलब सर्वश्रेष्ठ। शिखंड मौली श्री कृष्ण का नाम है जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ रत्न, सर्वश्रेष्ठ मणि। आप पवर्ग दाता पी, यद्यपि आप पवर्ग प्रदान करते हैं सबको, पवर्ग अर्थात भव बंधन, प फ ब भ म है ना, परिश्रम, फेण, बंधन, भय और मृत्यु। तो आप इन चीजों को देकर प फ ब भ म, इन पांच चीजों को देखकर आप यहां बद्ध जीवों को बंधन में डालते हैं इस संसार में। पवर्ग दाता पी शिखंड मौली त्वाम शात्रणाम अपवर्ग दोषी। हालांकि आप पवर्ग देते हैं सबको बद्ध जीवों को, लेकिन आपके शत्रुओं को आप अपवर्ग देते हैं। कितनी सुंदर बात है, अपवर्ग दोषी, अपवर्ग दह सी, दह मतलब देने वाले, आप देते हैं। तो आपकी कितनी कृपा है कि हालांकि इतने सारे बद्ध जीव पवर्ग में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु आपके शत्रुओं की जब हत्या आप करते हैं तो उनको अपवर्ग दे देते हैं। और इतना ही नहीं, मुक्ति की बात तो दूर है, आप कभी कभी उनको भक्ति भी दे देते हैं। भक्ति तो मुक्ति से श्रेष्ठ है, जैसे कि आपने पूतना के साथ किया। पूतना का वध करके श्री कृष्ण ने पूतना को एक धात्री का स्थान गोलोक वृंदावन में दे दिया। तो किस प्रकार से भगवान दंड देकर सबका हित करते हैं ये हम सुन चुके हैं अभी। तो किस प्रकार से हित करते हैं, एक उनके अंदर जो भी दुष्ट प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देते हैं। दूसरा उनके अंदर यदि कोई घमंड है वो भी खत्म कर देते हैं। तीसरा कोई श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं जैसे स्वर्ग आदि लोगों को लोकों में जन्म देते हैं। और आगे वो हित कर सकते हैं मुक्ति प्रदान करके। और अंततः सबसे श्रेष्ठ वरदान जो श्री कृष्ण दे सकते हैं किसी तथाकथित शत्रु को वो भक्ति है, जैसे कि उन्होंने पूतना को प्रदान की थी। तो दूसरे शब्दों में इंद्रदेव कह रहे हैं कि आप दंड देते हैं तो केवल अन्यों के हित के लिए। और जो इच्छा तनु भी ही, आप इच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार तरह तरह के दिव्य शरीर धारण करके यहाँ पर आते हैं। तनु भी अर्थात ये बहुवचन है, तो आपके अनेक अवतारों में आप प्रकट होते हैं यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में। और क्या काम करते हैं आप आके, समीह से मानम विधुन्वन जगत ईश मानिनम, जगत ईश मानिनम, जो अपने आप को जगत की ईश्वर मानते हैं ऐसे लोगों के मानम विधुन्वन, उनके मान को आप छीन लेते हैं, मान भंग कर देते हैं। समीह से तो ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए जो इच्छा तनु भी आप भिन्न भिन्न अवतार स्वीकार करते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूं, हे इंद्र कहते हैं कृष्ण से। तो आपका ये रूप भी इसलिए है क्योंकि मैं भी अपने आप को जगत का ईश्वर मान रहा था। इस प्रकार से इंद्रदेव ये सुंदर प्रार्थना श्री कृष्ण को करते हैं और बाद में कहते हैं ये मत विध अज्ञा जगत ईश मानिनः, कि देखिए श्री कृष्ण मद विध अज्ञा, मद विध मतलब मेरे जैसा, अज्ञ मतलब मूर्ख, जगत ईश मानिनस, मेरे जैसे जो मूर्ख हैं, जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं इस जगत के, उनके बारे में क्या? बहुत ही जल्दी त्वाम वीक्ष काले अभयम्, जब वो आपको देखते हैं और समझ जाते हैं कि काल शक्ति के परे आप हो, काल शक्ति का भय आपको नहीं होता, तो फिर बहुत ही जल्दी आशु तन मदम हित्वा, उनके अंदर जो मद होता है, जो घमंड होता है, बहुत ही शीघ्र उस घमंड को त्याग देते हैं। आर्य मार्गम प्रभजन्ति अपस्मया, और फिर आर्य मार्ग को, सत मार्ग को बहुत ही पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इहा खलानाम अपि ते अनुशासनम, और इस प्रकार से आप दुष्ट लोगों को दंडित करते हैं केवल उनको उपदेश देने के लिए, उनको सही करने के लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण, जब इंद्रदेव मद विध अज्ञा कह रहे हैं मेरे जैसे मूर्ख, तो वो कहना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि जब मद विध कहते हैं मेरे जैसा, तो ये इसका मतलब है कि उनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति का मुंह जो है चांद के जैसा खूबसूरत है, इसका मतलब है कि चांद सबसे ज्यादा सुंदर है और इस व्यक्ति का मुख उस चांद के समान है। उसी प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब इंद्रदेव कहते हैं मद विध अज्ञा, वो कह रहे कि मुझ जैसा मूर्ख, अर्थात सबसे मूर्खों में से मूर्ख मैं हूं हे कृष्ण, क्योंकि मैंने अपने आप को जगदीश मान लिया। और जितने भी ऐसे झूठे जगदीश हैं उनमें से सबसे ज्यादा मूर्ख मैं हूं, ऐसा इंद्रदेव कहते हैं। लेकिन जब ऐसे मूर्ख व्यक्ति आपको जान जाते हैं और वो पहचान लेते हैं कि जो काल शक्ति सारे सृष्टि का दमन करते रहती है वो आपका दमन नहीं कर सकती, बल्कि वो आपकी शक्ति है और आप काल शक्ति के सामने निर्भय हैं, तब वो अपने अहंकार को त्याग देते हैं। भीषास्माद वातः पवते, भीषो देति चंद्रः, भीषास्माद अग्निश्चंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। तो केवल श्री कृष्ण के डर से पवन बहता है, केवल श्री कृष्ण के डर से सूरज और अग्नि अपनी उष्णता वो प्रकट करते हैं, विस्तारित करते हैं, केवल श्री कृष्ण के भय से चांद अपनी रोशनी देता है, और केवल श्री कृष्ण के भय से मृत्यु सबका पीछा करता है काल रूप में। तो काल भी स्वयं श्री कृष्ण से डरता है। तो जो श्री कृष्ण को जान जाता है वो इस बात को भली भांति जान लेता है कि काल भी श्री कृष्ण से डर रहा है, हम सब काल से डरते हैं और काल श्री कृष्ण से डरता है, तो इसलिए मुझे भी मेरा घमंड का क्या स्थान यहाँ पर, श्री कृष्ण के सामने हम कौन हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण का ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति आर्य मार्ग पर चलता है, सभ्यता के पथ पर चलता है। इसलिए ये तत्व ज्ञान को जानना आवश्यक है, ऐसे तत्व ज्ञान से हमारे हृदय के अनर्थों का निवारण होता है और भक्ति करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान बन जाता है हमारा हृदय। तो कभी कभी ऐसे तत्वों को समझने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, इससे ये हमारे भक्ति के लिए बहुत पौष्टिक है। और ये प्रार्थनाएं जो हैं, जो इंद्रदेव कह रहे हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। इंद्रदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जो जगदीश हैं, और उनको मानने वाले लोग वो भी एक प्रकार के जगदीशी हो जाते हैं। आजकल प्रजातंत्र चल रहा है। वैसे साधारण तौर से ये कहा जाता है कि प्रजा का जो पाप है वो इसका एक छठा भाग जो है वो राजा स्वीकार करता है। परंतु प्रजातंत्र में क्या होता है? प्रजातंत्र में प्रजा ये विचार करती है कि ये नेता, इस नेता को हमने चुना है, ये हमारा प्रतिनिधि है। ये गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा को होना चाहिए भगवान का प्रतिनिधि, न कि प्रजा का प्रतिनिधि। और क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि वो धर्म का पालन करता है और धर्म का पालन कराता है प्रजा से, तो प्रजा के पाप से वो मुक्त होता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो उस शाकाहारी भोजन में जो पाप है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं, और फिर हम उस शुद्ध प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब प्रजा जान लेती है कि राजा नारदेव है, क्योंकि वो धर्म परायण है, भगवान का प्रतिनिधि है नर रूप में, तब प्रजा के ऊपर कोई संकट नहीं आता है। परंतु जब प्रजा समझती है कि ये नेता मेरा प्रतिनिधि है, तो मैं जो चाहता हूं उसे करना चाहिए, इसलिए चलो एक बड़ा दल बनाओ और दबाव डालो नेताओं के ऊपर, हमारी मांगे पूरी करो, तो ऐसे जब होता है तो जो राजा के पाप हैं और जो प्रजा के पाप हैं, दोनों प्रजा को भुगतना पड़ता है राजा के साथ साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी ये प्रजातंत्र कितना हानिकारक है हम समझ सकते हैं। वैदिक सभ्यता है कि राजा नारदेव है, भगवान का प्रतिनिधि, इसलिए हमें चाहिए कि ठीक है अब प्रजातंत्र तो है, अब क्या किया जा सकता है, राजतंत्र लाने के लिए तो संभव नहीं है इस समय, और राजतंत्र आए भी तो कोई ऐसे कृष्ण भावना भावित राजा चाहिए, तो प्रजातंत्र ही भले रहे। परंतु ऐसे नेता हों देश में, हर एक देश में, जो कृष्ण भावना भावित हों, जो प्रजा को कृष्ण भक्ति के मार्ग में ले चलें, तब प्रजा का भला होगा और राजाओं का भी भला होगा, और उस समय ये सृष्टि जो है ये वैकुंठ बन जाएगी। तो इंद्रदेव को बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए आके ऐसे सुंदर तत्व से भरे प्रार्थनाओं को वो कृष्ण के सामने कह रहे हैं। तो कल हम इंद्रदेव की प्रार्थनाओं को और आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद इंद्रदेव जब अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं तो फिर क्या होता है वो भी हम कल सुन लेते हैं। हरे कृष्ण।